भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार देशों की यात्रा में रूस में हैं। भारत और रूस के बीच बड़े आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। जानकारों के अनुसार इन समझौतों से भारत की ऊर्जा जरूरतों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणय उपाध्याय साहब। प्रणय सर, एसबीएस रेडियो पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद
सर। इस पूरी कवायद का, इस समझौते का, या अगर हम इस जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का, उसका क्या मतलब निकालें? क्या रूस पैसे देने के लिए तैयार हो गया है? क्या बाकी जो सुविधाएं हैं टेक्निकल, वो देने के लिए तैयार हो गया है अगले दो जो प्लांट्स लगने हैं उनके लिए?
देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो रूस यात्रा थी, ये भारत और रूस के रिश्तों के लिहाज से कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि आप देखिए, पिछले कुछ समय में भारत और रूस के रिश्तों में एक कुछ ठंडक सी आई थी, कुछ सुस्ती सी आई थी। भारत और अमरीका के बीच की जो गर्मजोशी थी, उसको शायद रूस ने उस तरीके से नहीं लिया और उसको लेके कुछ समस्याएं भी हुई। और खास तौर पर एक जो नया जियोपॉलिटिकल अलायंस एशिया पैसिफिक पिवट का जो अमरीकी कंसेप्ट था, उसके मुकाबले तैयार हुआ, जिसके अंदर रूस, चीन और उनके साथ साथ ही चीन और पाकिस्तान की जो नजदीकी हैं, वो भी इस अलायंस में नजर आने लगी थी। तो भारत के लिए स्वाभाविक रूप से चिंताएं थी, क्योंकि भारत की पहली प्राथमिकता एशिया का मोहल्ला है, जहां पे रूस उसका पुराना दोस्त है, अफगानिस्तान में उनके इंटरेस्ट हैं। तो इन सारे जियोपॉलिटिक्स के मद्देनजर शायद प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश थी कि उनकी इस रूस यात्रा के सहारे भारत और रूस के रिश्तों में जो सुस्ती आई थी, उसमें एक नई ऊर्जा आए। और ऊर्जा का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत और रूस के बीच में कल जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद, उसमें ऊर्जा पहला पॉइंट है। ऊर्जा पे, सहयोग पे खासा जोर दिया गया है। और आप देखिए, भारत और रूस के रिश्तों में ऊर्जा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि जिस समय भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई नहीं दे रहा था, भारत को न्यूक्लियर सबमरीन किसी ने नहीं दी, उस समय रूस ही भारत का सहायक है। भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन है, इंडिजिनस सबमरीन INS अरिहंत, उसको डेवलप करने में रूसी सहायता है। और इसके अलावा कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, प्रोजेक्ट है, जिसकी यूनिट 1 और 2 पहले से थी, उसके बाद 3 और 4 हुआ जो भारत जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है और भारत का जो न्यूक्लियर अपार्थाइड खत्म हुआ उसके बाद से। और अब जो उसका एक्सपांशन प्लान था, यानी यूनिट 5 और 6, वो भी बनने का रास्ता साफ हो गया है। इससे जो जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आपने जिसका जिक्र किया, जो कंक्लूड हुआ है कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद, उसमें एक राहत खाका है कि किस तरीके से भारत और रूस इसमें आगे बढ़ेंगे। जाहिर तौर पर इसमें फाइनेंसिंग के इश्यूज भी हैं, इसमें टेक्निकल नो हाउ के इश्यू भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। इस उसमें कहा गया है, दोनों नेताओं ने इस यूनिट 5 और 6 का जो एग्रीमेंट हुआ उसका तो स्वागत किया ही। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंधों का भविष्य जो है, वो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ईंधन चक्र और नाभिकीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिहाज से काफी संभावनाओं भरा है। और साथ ही उन्होंने इस चीज पर भी जोर दिया कि नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच में जो संबंध बढ़ रहे हैं और जो सहयोग बढ़ा है, उससे भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया योजना है, उसके तहत उन्नत परमाणु निर्माण क्षमताएं विकसित करने के अवसर पैदा होंगे, उसका दरवाजा खुला है। ये कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। यानी भारत का जो जो इंडिजिनस न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें रशियन टेक्नोलॉजी की मदद मिल पाएगी, मेक इन इंडिया के तहत न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ बन पाएंगे, तो ये एक स्टेप आगे है। केवल रिएक्टर एक्वायर करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन्हें को डेवलप करने की भी प्रक्रिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऊर्जा के लिहाज से हुई हैं, जिसके अंदर आप कहा जा सकता है कि साझा एक्सप्लोरेशन है, चाहे वो आर्कटिक सी का हो या डीप सी का हो। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है उसके लिहाज से, तो ऊर्जा के विभिन्न फैसेट जितने भी हैं, चूंकि हाइड्रोकार्बन मार्केट के लिहाज से रशियन इकोनॉमी को बढ़ाए रखने के लिए भी ऊर्जा एक्सपोर्ट रूस की प्राथमिकता है, और ऐसे में भारत ने रूस से ईंधन और ऊर्जा के समझौते करके एक तरीके से रूस के जो जो इकोनॉमिक एक्सपांशन है या जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रास्ता है, उसमें रूस का साथ दिया है। और ये चीज रूस बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि इस समय में भारत अगर दुनिया का जो सबसे बड़ा ईंधन खरीदार के तौर पर उभरा है, वो अगर उसके साथ खड़ा नजर आता है, तो ये रूस की इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छा संकेत है, यानी कारोबारी रिश्तों के हिसाब से ये एक नई ऊर्जा देगा भारत और रूस के संबंधों में। और इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें दूसरी भी हुई हैं, जिसको कहा जा सकता है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो दोनों मुल्कों के बीच में 2000 से है ही सही, लेकिन एक प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो पहली बार होगा कि 2017 के अंदर भारत और रूस तीनों सेनाओं का एक साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। इसके अलावा रुपया रूबल विनिमय की एक बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, तो उसको भी एक संकेत मिला है कि दोनों देश कोशिश करेंगे, प्रमोट करेंगे कि रुपी रूबल जो एक्सचेंज है उसको प्रमोट किया जाए ताकि थर्ड कंट्री डिपेंडेंस कम हो।
प्रणय सर, ये भी बताएं कि इन समझौते से क्या मेक इन इंडिया को कोई फायदा होने वाला है?
देखिए, भारत का मेक इन इंडिया जो है वो अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो अपने मेच्योरिटी फेज में है, यानी शुरुआत में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तो मेक इन इंडिया एक आइडिया था, एक कंसेप्ट था। उस आइडिया और कंसेप्ट ने भी कई उतार चढ़ाव देखे, तो अब एक रियलिस्टिक फेज में है। अब शायद सरकार भी स्टेबलाइज हो चुकी है, उसे भी अच्छी तरीके से पता है कि प्रोजेक्ट कौन से रियलाइज हो चुके हैं, किस तरीके से वो रियलाइज होंगे, उनके रास्ते पे आगे कैसे बढ़ा जाए। ये चीजें, डिफेंस सेक्टर एक ऐसी चीज है जहां भारत के पास अश्योर्ड रिक्वायरमेंट है। भारत को अपने सबमरीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत की रिक्वायरमेंट है, इंडियन ओशन रीजन में जो भारत की जरूरतें हैं उसके मुताबिक भारत को सबमरीन की जरूरत है। भारत जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट फ्रेमवर्क भारत ने अभी बनाया है हाल ही में, जिसमें जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सुविधाएं और प्रावधान रखा गया है। ऐसे में रूस भारत का महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में खासतौर पर हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज का इतिहास रहा है।
प्रणय उपाध्याय साहब, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत।